नमस्कार श्रोताओं, सबसे पहले आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ शुरू करते हैं आपका अपना प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन जी, आपका स्वागत।
धन्यवाद जया।
सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवन्स ट्रॉफी 2025 में रजत पदक जीतकर एशिया की शीर्ष टीमों में शामिल। अनाहत सिंह शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप का अंतिम लीग मैच वर्षा के कारण रद्द। सेमीफाइनल से पहले प्रतीका रावल विश्व कप के बाकी मैचों से बाहर। और सुजीत कलकल ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मुकाबले में जगह पक्की की। शुरुआत एशिया रग्बी से। भारत की पुरुष रग्बी सेवन्स टीम ने मस्कट में एशिया रग्बी एमिरेट सेवन्स ट्रॉफी 2025 में रजत पदक हासिल किया है और इसके साथ ही भारत एशिया की शीर्ष टीमों में शामिल हो गया है। बात करने से पहले जानते हैं पूरी प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा।
भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासन, कौशल और दृढ़ता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में लेबनान को 14-10 से हराया। इसके बाद उसने अफगानिस्तान पर 26-5 से जीत दर्ज करके ग्रुप चरण का समापन किया और अपनी लय बरकरार रखी। नॉकआउट चरण में भी टीम का दबदबा जारी रहा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ईरान पर 21-7 से शानदार जीत हासिल की। टीम ने आज सेमीफाइनल में सऊदी अरब को 17-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में भारत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान के खिलाफ शानदार जुझारूपन दिखाया, लेकिन बाद में 0-27 से हार का सामना करना पड़ा। भारत का ये उपविजेता प्रदर्शन अब उसे जापान, श्रीलंका और चीन जैसे एशिया के शीर्ष टीमों की कतार में खड़ा करता है। पुरुष और महिला दोनों भारतीय टीमें अब एशिया रग्बी के प्रीमियर डिविजनों में शामिल हो चुकी है, जिससे मस्कट टूर्नामेंट भारतीय रग्बी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
जैसा कि अभी अपने रिपोर्ट्स में सुना, भले ही भारत की टीम उपविजेता रही, लेकिन पहली बार रग्बी में इतना अच्छा, इतना बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला।
निश्चित तौर पे एक सराहनीय रहा इनका प्रदर्शन। हेड कोच जो हैं वो बेन गोलिंग्स हैं, ये इंग्लैंड के फॉर्मल इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं
जी।
और जब से इन्होंने टीम की कमान संभाली है, एक अलग तरीके का एक प्रदर्शन देखने को मिला है और वो इससे बहुत खुश भी हैं टीम के प्रदर्शन से। उनको लगता है कि जब हम अब प्रीमियर कैटेगरी में हमारी टीम का आगमन हो गया है तो इसके बाद हमें और अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ जो पूर्व हमारे राहुल बोस पहले खिलाड़ी भी रह चुके हैं रग्बी के और अभी प्रेसिडेंट हैं, उनको भी उनसे भी जब बात करी गई, एक एजेंसी ने उनसे बात करी तो उन्होंने भी बहुत इस बात पे खुशी जताई। रग्बी में दरअसल हमारा कोई बहुत अच्छा कोई ऐसा रहा नहीं है और ये तब पहली बार तब चर्चा में आया था जब कॉमनवेल्थ में यहाँ लोगों ने देखा कि भारतीय टीम भी रग्बी खेलती है। अब सबको याद होगा 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय में रग्बी के लिए एक स्टेडियम बनाया गया था जिसमें सभी मुकाबले हुए थे, भारतीय टीम भी उसमें खेली थी और वो बहुत अनजाना सा खेल था हम भारतीयों के लिए, हम पत्रकारों के लिए भी, कि इसको देखना और इसको समझना एक हमारे लिए भी एक चुनौती थी, एक नई चीज़ थी हमारे लिए। लेकिन जिस तरीके से अब जो ये प्रदर्शन देखने को मिला है, ये काफ़ी उम्मीद जगाता है भविष्य के लिए।
जी बिल्कुल, जैसा सचिन आप बात कर रहे हैं कि पहले रग्बी उस तरह से प्रचलित नहीं था, अब लग रहा है कि भारत भी रग्बी खेल सकता है, तो क्या इस सफलता का श्रेय हम जेएमआर रग्बी प्रीमियर लीग को दे सकते हैं जिसने खिलाड़ियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ खेलने का एक अनुभव दिया।
निश्चित तौर पे देखिए फर्क पड़ता है, किसी भी खेल में अगर आप ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका देंगे मैदान पे आने का, उनको अपने प्रतिभा दिखाने का, हुनर दिखाने का, तो उसका असर पड़ता है। देखिए कई खेलों में हम लोगों ने ये देखा है, खासतौर से क्रिकेट हमारे लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि हमारा देश जो है वो एक तरीके से बाकी खेलों से ज्यादा क्रिकेट से अपने को रिलेट करता है। तो जैसे हम आईपीएल की बात करते हैं कि एक इतनी बड़ी लीग शुरू हुई देश के अंदर जो सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन गई दुनिया की, उसमें बहुत पैसा है और उसमें सबसे ज्यादा प्रतिभा भी दिखती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो खिलाड़ी आते हैं वो भी बहुत प्रतिभावान है, सब अपनी राष्ट्रीय टीमों के लिए खेलते हैं और जब उनके पास समय होता है तो वो यहाँ आईपीएल में जो भी विंडो उनकी बन पाती है कोई नहीं भी आता है लेकिन आते हैं, और उससे हमारे खिलाड़ियों को बहुत फायदा हुआ क्योंकि हमारे जो दूसरी पंक्ति के खिलाड़ी हैं या तीसरी पंक्ति के खिलाड़ी, उनको ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला जो वो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो जिस तरह से हमने वहां पे एक छलांग लगाई, जो प्रोग्रेस देखने को मिली, तो ये बाकी खेलों में भी होगा जया, जरूर होगा अगर इसी तरीके की लीग और इसी तरीके की खेल का एक ढांचा देश के अंदर बनेगा।
जब रग्बी की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम स्क्वाश की भी बात कर ले, जहां मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। विश्व में 43वें स्थान पर काबिज दिल्ली की 17 वर्षीय खिलाड़ी अनाहत ने प्री क्वार्टर फाइनल में विश्व की 20वें नंबर की खिलाड़ी फ्रांस की मेलिसा अल्वेस को हराया। 41 मिनट तक चले इस मुकाबले में अनाहत ने 12-10, 12-10, 8-11, 11-2 से उन्हें पराजित किया। अब अनाहत का अगला मुकाबला बेल्जियम की दूसरी वरीयता प्राप्त टीनी गिलेस से होगा।
देखिए, अनाहत का आना जो है वो अपने आप में बहुत ही एक चौंकाने वाला भी कह सकते हैं और एक सुखद भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक तो वो बहुत अभी कम उम्र है और जिस तरीके से भारतीय स्क्वैश में आप कह सकती हैं कि जोशना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल के बाद एक शून्य आ रहा था, उसको उन्होंने भरने की कोशिश की और बहुत अच्छी तरीके से भरा भी है। वो अभी बहुत छोटी हैं, मात्र 17 साल की हैं, लेकिन उन्होंने उपलब्धियां जो हैं अपनी वो बहुत कम उम्र में हासिल करना शुरू कर, 14 साल की उम्र में वो कॉमनवेल्थ खेली थी और उसमें उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक जगह बनाई। फिर उसके बाद एशियन गेम्स में उन्होंने टीम में और मिक्स डबल्स में मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी किसी भी ऐसे खिलाड़ी के लिए जो बहुत ही अभी छोटा हो, एकदम नवोदित हो उस खेल में। तो अब जिस तरीके के अब मुझे नहीं लगता कि अब उनके जो ट्रॉफी रखने का कैबिनेट होगा वो जो उन्होंने सोच के बनाया होगा, हो सकता है कि उसको उन्होंने डबल ट्रिपल कर लिया, क्योंकि वो हर साल इतनी सफलताएं हासिल कर रही हैं। और वो एक देखिए बड़ा एक हैरत की बात है कि वो बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी, लेकिन चूंकि उनकी बड़ी बहन खेलती थी इस खेल को और अंडर 19 की हमारे टॉप खिलाड़ी थी देश की, फिर वो बाहर पढ़ने चली गई, लेकिन उनके पिता माता पिता खिलाड़ी थे, वो चाहते थे हमारे बच्चे खेलें, और उनको ये आसानी थी कि अगर ये बिटिया हमारी बैडमिंटन छोड़ करके स्क्वैश खेलने लगी तो हमें दोनों बच्चों को एक साथ ले जाने में आसानी होगी। तो लेकिन बैडमिंटन के लिए जो भी हुआ नुकसान हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पीवी सिंधु के नक्शे कदम पे चलना चाहती थी, लेकिन स्क्वैश को जरूर फायदा हुआ है और ये एक खिलाड़ी हमें इस स्तर की इस कद की मिली है।
जी बिल्कुल, इसके साथ ही भारत को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब बात आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच कल खेला गया अंतिम लीग मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया। हालांकि भारत की महिला टीम पहले से ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। एक नजर कल के मैच पर।
नवी मुंबई में कल रात डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर भारत को जीत के लिए 27 ओवर में 126 रन का संशोधित लक्ष्य मिला था। जवाब में वर्षा के कारण मैच रोके जाने तक भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में बिना किसी नुकसान पर 57 रन बना लिए थे। मैच पूरा होने के लिए आवश्यक 20 ओवर का खेल न हो पाने के कारण अंपायर ने बिना किसी निर्णय के मैच समाप्त करने की घोषणा की। मैच रद्द होने के समय स्मृति मंधाना 34 और अमनजोत कौर 15 रन बनाकर खेल रही थीं। इससे पहले बांग्लादेश वर्षा कारण पुनः निर्धारित 27 ओवर में 9 विकेट पर केवल 119 रन ही बना सका। शर्मीन अख्तर ने सर्वाधिक 36 रन बनाए। भारत की ओर से राधा यादव ने 3, श्रीचरणी ने 2 और रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा तथा अमनजोत कौर ने एक एक विकेट लिया। भारत 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 7 अंक लेकर अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। बांग्लादेश 3 अंक के साथ 7वें और पाकिस्तान अंतिम स्थान पर है। अब 29 अक्टूबर से सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच, जबकि दूसरा बृहस्पतिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स स्कैन।
भारत का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में, और इस बीच फॉर्म में चल रही हमारी सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल घुटने और तकनीकी चोट के कारण इस विश्व कप के बाकी मैचों से बाहर हो गई है।
ये काफी भारतीय टीम के लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि वो एक अच्छी फॉर्म में चल रही थी। 6 मैचों में 51.33 के औसत से उन्होंने जो 308 रन बनाए थे, ये दर्शाते थे कि ये इस टूर्नामेंट के लिए बहुत भारत के लिए अच्छा उनका रहा है योगदान। और सेमीफाइनल तो अब खेला जाएगा। इससे पहले जब लीग मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने शतक लगाया था, तो वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव था इस टूर्नामेंट का, क्योंकि भारतीय टीम उस समय तक अगर मगर की स्थिति से गुजर रही थी। अंतिम मैच का हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, ये इस मैच का निर्णय नहीं आया, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे पहले जरूर क्योंकि हम उससे दो टीमों से हम मैच हार चुके थे, तो उसका असर पड़ना था। लेकिन प्रतीका के खेल से ये स्पष्ट हो गया कि अब हम चार टीमों में रहेंगे। अब उनका ना रहना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के लिए एक करारा झटका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि उनकी जगह कौन खेलेगा, ये भी एक बहस छिड़ गई है। मिताली राज जो पूर्व कप्तान रही हैं भारतीय महिला टीम की, उनका कहना है कि हरलीन देओल को उस जगह पर लाना चाहिए, जबकि कप्तान ने जो है यहाँ पे एक अन्य खिलाड़ी जो ऑलराउंडर हैं हरमनप्रीत, उनको उतारा। तो उससे जो है थोड़ी सी एक बहस है, और मुझे लगता है कि जब तक मैच नहीं आएगा इस तरीके की आकलन चलते रहेंगे विशेषज्ञों के बीच में, पूर्व खिलाड़ियों के बीच में। लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए, बस यही सब दुआ कर रहे हैं, क्योंकि टीम एक काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, एक अच्छे प्रदर्शन के बाद, एक जज्बे वाला प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंची है। और राधा यादव की गेंदबाजी भी इस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, हालांकि उसका कोई परिणाम नहीं निकला, एक अच्छी रही, तो ये भारत के लिए एक अच्छा पक्ष कहा जा सकता है।
जी बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रतीका रावल चोट के कारण जहां बाहर हो गई हैं, इसमें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के फैंस के लिए भी एक बुरी खबर है कि श्रेयस अय्यर चोट के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी वो आईसीयू से बाहर आ गए।
निश्चित तौर पर देखिए, ये एक ऐसी खबर थी जिससे काफी एक लोगों के बीच में वो क्या कह सकते हैं कि मतलब उनके फिटनेस को लेकर एक संदेह पैदा हो गया था कि क्या होगा इस खिलाड़ी के साथ, क्योंकि ये जो चोट उनको लगी है ये इस काफ़ी नुकसानदेह भी उनके लिए हो सकती थी। लेकिन अब जो है जिस तरीके की बात वहाँ से आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, आईसीयू से वो बाहर आ गए हैं, और लेकिन उनको रिकवरी में अभी टाइम लगेगा जया जी। तो वो मैदान पे कब आएंगे ये तो अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन फिलहाल एक अच्छा खेल रहा खिलाड़ी जरूर मैदान से खेल से बाहर हो गया है।
हालांकि पूरे फैंस की प्रार्थनाएं उनके साथ है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम चलते हैं जम्मू और कश्मीर में, जहां T20 इंडियन हेवन प्रीमियर लीग IHPL श्रीनगर के बक्से स्टेडियम में खेला जा रहा है। लीग के दूसरे दिन के मैच की जानकारी के लिए सुनते हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
आज दो T20 मैच खेले गए। T20 लीग में कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। स्पोर्ट्स कैन से विशेष बातचीत में हेवन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष आशुदानी ने कहा,
जो कल शाम का मैच हुआ, किश्तवाड़ जायंट्स ने सिर्फ 67 रन बनाए थे और लद्दाख हीरोज ने इसको 3 विकेट खोके ही बना लिया। आज का सुबह का मैच श्रीनगर सुल्तान्स और जम्मू लॉयंस के बीच में, श्रीनगर सुल्तान ने 97 रन बनाए थे, जम्मू लॉयंस ने उसको 7 विकेट खोके बना लिया। आज का मैच पत्नीटॉप वॉरियर्स और पुलवामा टाइटंस के बीच में है। काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं नेशनल के और इंटरनेशनल के।
जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय खेल श्रृंखला के सुचारू संचालन के लिए मजबूत सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। फाइनल मुकाबला अगले महीने की 8 तारीख को खेला जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए श्रीनगर से मैं तारिक राठौर।
अब बाद U23 कुश्ती चैंपियनशिप की, जहां सर्बिया में चल रहा है जो सुजीत कलकल ने उसमें पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के यूटो नुसीउची को 3-2 से हराया और फाइनल में जगह पक्की कर ली। सुजीत सेमीफाइनल मुकाबले में अंत तक पिछड़े रहे, लेकिन आखिरी क्षणों में जिस तरह से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 2 अंक के साथ जापानी खिलाड़ी को पछाड़ दिया।
नहीं देखिए, सुजीत के बारे में यही कहा जाता है कि वो बहुत आक्रामक खेलते हैं और उनका जो खेलने की जो शैली है वो यही मानी जाती है कि जो पारंपरिक तौर पे जो खिलाड़ी को थका के हराने की जो नीति है उसके विपरीत वो आक्रामक तरीके से खेलना चाहते हैं और मैच को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो ये कभी उनके पक्ष में जाता है और कभी उनको नुकसान भी होता है। लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल जो है कई सफलताएं हासिल करी हैं और ये उनका पहला स्वर्ण होगा अगर वो यहाँ जीतते हैं तो, और इसके लिए वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, उम्मीद है कि वो स्वर्ण दिला करके ही रहेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का, तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। सचिन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
जया,
इसी के साथ श्रोताओं, मुझे स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।